यादव, यादव और कौरव, यादवों के विविध राज, एल वंश के प्रतापी राजा अयाति के पांच पुत्रों का उल्लेख पहले किया जा चुका है, जिन सब ने आर्य जाति की शक्ति का दूर दूर तक विस्तार किया और अपने पृथक राज स्थापित किए। ये पांचों यदु, तुर्वसु, द्रुहु, अनु और पुरु वंशकर राजा थे। इनमें से यदु द्वारा यादव वंश का प्रारंभ हुआ। यदु ने केन, बेतवा और चंबल नदियों की घाटियों में अपने राज की स्थापना की थी। यदु के वंश में आगे चलकर सस्विंदु नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ। उसने द्रुह और पुरु के वंशजों के राज्यों को जीतकर अपने अधीन कर लिया था, पर यादवों की यह शक्ति देर तक कायम नहीं रह सकी। सस्विंदु का जमाता अयोध्या का शक्तिशाली एच्वाकब राजा मांधता था, जिसने अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए दूर दूर तक विजय यात्रा की थी। मांधता के कारण यादव वंश के राजाओं की शक्ति का विस्तार रुक गया और सस्विंदु ने यादवों का जो चक्रवर्ती साम्राज्य बनाना शुरू किया था वह अपूर्ण ही रह गया। मांधदाता के तीन पीढ़ी बाद यादवों को अपनी शक्ति के उत्कर्ष का फिर अवसर मिला। उनकी है शाखा ने राजा महिष्मंत और बाद में कार्तवीर्य अर्जुन के नेतृत्व में किस प्रकार अपनी शक्ति का विस्तार किया यह हम पहले लिख चुके हैं। यादवों की एक अन्य शाखा ने विदर्भ में अपने पृथक राज की स्थापना की, यह भी पहले बताया जा चुका है। आगे चलकर इस विदर्भ देश में मधु नाम का एक शक्तिशाली यादव हुआ जो बड़ा प्रतापी था। उसने यादव वंश के विविध राज्यों को मिलाकर एक शक्तिशाली चक्रवर्ती राज की स्थापना की, पर यादवों की संख्या की यह एकता देर तक कायम नहीं रह सकी। मधु के बाद चौथी पीढ़ी में सतवत नाम का वीर हुआ जिसने शाश्वत नाम से अपना पृथक वंश प्रारंभ किया। सतवत का पुत्र भीम, राम और कुश का समकालीन था। सातवत वंश के यादव यमुना के पश्चिम में वर्तमान समय के मथुरा प्रदेश में शासन करते थे। इक्ष्वाकब राम के अनुज शत्रुघ्न ने इस प्रदेश को जीतकर अपने अधीन किया। शत्रुघ्न के दो पुत्र थे, सुबाहु और सूरसेन। सूरसेन के नाम से मथुरा का समीपवर्ती यह प्रदेश सौरसेन कहने लगा। शत्रुघ्न की मृत्यु के बाद उसके लड़के इस प्रदेश पर अपने आधिपत्य को कायम नहीं रख सके। भीम सातवत ने मथुरा में पुनः यादवों की सत्ता को कायम किया। भीम के अनेक पुत्र थे जिनमें अंधक और वृष्णी प्रसिद्ध थे। ये दोनों वंशकर राजा थे। इनके नाम पर अंधक और वृष्णी राज्यों का प्रारंभ हुआ। महाभारत युद्ध के समय के कृष्ण वृष्णी वंश में उत्पन्न हुए थे और कंस अंधक वंश में। महाभारत के समय में अंधक और वृष्णी राज्यों का परस्पर मिलकर एक संघ बना हुआ था। इनके अतिरिक्त एल वंश की यादव शाखा के अन्य भी अनेक राजा विदर्भ, अवंती आदि में विद्यमान थे। यादव वंश की है शाखा का माहिष्मति का पुराना राज भी बहुत समय तक कायम रहा था। कौरव राज, हस्तिनापुर के कौरव वंश ने अपनी शक्ति का विकास किस प्रकार किया यह ऊपर लिखा जा चुका है। राजा कुरु के नाम पर हस्तिनापुर के इस कौरव वंश का नाम कौरव हो गया था, यह भी हम पहले लिख चुके हैं। कुरु की 14वीं पीढ़ी में राजा प्रदीप हुए। यह बहुत प्रतापी था। इसने हस्तिनापुर के राज को बहुत उन्नत किया। प्रदीप के बाद उसका पुत्र शांतनु हस्तिनापुर का राजा बना। शांतनु के पौत्र धृतराष्ट्र और पांडु थे। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 पुत्र थे जो महाभारत की कथा में कौरव नाम से विख्यात हैं। पांडु के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये 5 पुत्र थे जो पांडव कहलाते थे। इंद्रप्रस्थ की स्थापना। कौरवों या धृतराष्ट्रों और पांडवों में परस्पर मेल नहीं था। पांडवों ने चाहा कि हस्तिनापुर के कुरु राज्य में उन्हें भी अपना हिस्सा मिले, पर दुर्योधन इसके विरुद्ध था। संघर्ष के बाद अंत में यह तय हुआ कि यमुना के पश्चिम में एक प्रदेश पांडवों को प्रदान कर दिया जाए। यमुना के पश्चिम का यह प्रदेश उन दिनों में एक घना जंगल था जिसे खांडव वन कहते थे। खांडव वन को जलाकर पांडवों ने उसे आबाद किया और वहां इंद्रप्रस्थ नगर बसाया। वर्तमान समय की नई दिल्ली के समीप पुराने किले में एक गांव था जिसका नाम इंद्रपत था। यह इंद्रपत शायद इंद्रप्रस्थ के भग्नावशेषों पर आबाद हुआ था। पांडवों के प्रयत्न से इंद्रप्रस्थ की बहुत उन्नति हुई। कुछ ही समय में वह एक उन्नत और समृद्ध नगर बन गया। सूरसेन देश में विद्यमान विष्णु राजा के राज्य के नेता कृष्ण के साथ पांडवों ने मैत्री की और उसकी सहायता से अपनी शक्ति को और अधिक बढ़ाने का प्रयत्न किया। पांडवों की इच्छा थी कि वे प्राचीन आर्य मर्यादा का अनुसरण कर दिग्विजयी के लिए निकलें और अन्य राजाओं को परास्त कर चक्रवर्ती पद को प्राप्त करें। पर उनकी इस महत्वाकांक्षा में जहां हस्तिनापुर के कौरव बाधक थे, वहां उनका सबसे बड़ा शत्रु जरासंध था, जो मगध में अपनी शक्ति को बढ़ाकर भारत का एकराट बनने के लिए प्रयत्नशील था। यहां यह आवश्यक है कि हम इस जरासंध के संबंध में अधिक परिचय दें। बृहद्रथ जरासंध। पौरव वंश के राजा वसु के पुत्र बृहद्रथ ने मगध में किस प्रकार अपने राज की स्थापना की और उससे बृहद्रथ वंश का प्रारंभ हुआ, यह हम पहले लिख चुके हैं। बृहद्रथ वंश के राजा निम्नलिखित थे: बृहद्रथ, उसाग्र, ऋषिभ, उत्सवान, सत्यहित, सुधन्वा, ऊर्ज, संभव, जरासंध, सहदेव, सोमादि और श्रुतसर्वा। पौराणिक अनुश्रुति के आधार पर बृहद्रथ वंश की जो सूची ऊपर दी गई है, यह संभवतः पूर्ण नहीं है। महाभारत में मगध के एक अन्य राजा का उल्लेख आया है जिसका नाम दीर्घ था और जिसे हस्तिनापुर के राजा पांडु ने परास्त किया था। इस प्रसंग में महाभारत में लिखा है, पृथ्वी को विजय करने की इच्छा से राजा पांडु भीष्म आदि वृद्धों, धृतराष्ट्र और पुरुषों के अन्य श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करके उनके अनुमति लेकर मंगलाचरण युक्त आशीर्वाद का श्रवण करता हुआ घोड़ों और रथों से युक्त बड़ी भारी सेना को साथ लेकर विजय के लिए चला। उन्होंने बल तथा अहंकार गर्वित मगध राज दीर्घ को उसकी राजधानी राजगृह में ही मार डाला। राजगृह से बहुत सा कोष और विविध प्रकार के वाहन पांडु के हाथ लगे। इससे सूचित होता है कि पांडु के समय में मगध का राजा दीर्घ था। बृहद्रथ वंशी जरासंध कौरव राज दुर्योधन और पांडव राज युधिष्ठिर का समकालीन था। क्योंकि दीर्घ पांडु का समकालीन था, इसीलिए उसे जरासंध से कुछ समय पूर्व मगध का राजा होना चाहिए। उसे हम ऊर्ज और संभव के बाद तथा जरासंध से पहले रख सकते हैं। यद्यपि मगधराज दीर्घ पांडु से परास्त हो गया था, पर उसके प्रताप व शक्ति में कोई संदेह नहीं किया जा सकता। महाभारत में लिखा है कि दीर्घ ने बहुत से राजाओं को हानि पहुंचाई हुई थी। बहुत से महीप उसके नुकसान उठाए हुए थे और इसीलिए उसे अपने बल का घमंड था। जरासंध। दीर्घ के बाद मगध की राजगद्दी पर जरासंध आसीन हुआ। महाभारत के अनुसार जरासंध ने सब क्षत्रिय राजवंशों की राजश्री का अंत कर सर्वत्र अपने तेज से आक्रमण कर सब राजाओं में प्रधान स्थान प्राप्त किया था। वह सबका स्वामी था। सारा संसार उसके एक वश में था और सर्वत्र उसका साम्राज्य था। चेदी का राजा शिशुपाल जरासंध की अधीनता स्वीकार करता था और मागध साम्राज्य के प्रधान सेनापति के पद पर नियुक्त था। कौरूप देश का राजा वक्र उसका शिष्य बना हुआ था। वक्र बड़ा प्रतापी राजा था और माया युद्ध में बहुत प्रवीण था। ऐसे ही करभ का राजा मेघवाहन, जिसकी ख्याति एक दिव्य मणि के कारण सर्वत्र विस्तृत थी, जरासंध के अधीन हो गया था। प्राज्ञ ज्योतिष का राजा भगदत्त, जिसके अधीन मुरु और नरक नाम के दो राजा थे और अनंत बल वाला भूपति था, न केवल वाणी से अपितु कर्म से भी जरासंध के अधीन था। बंग पुंडरु और किरात का राजा वसुदेव भी जरासंध के अधीन था। युधिष्ठिर का माम पुरुजित भी मगध के राजा की अधीनता स्वीकृत करता था। इस प्रकार पांडे और कथ कैसिव का राजा भीष्म भी मगध साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करता था। ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है कि जरासंध का साम्राज्य पूर्व में बंगाल और असम तक फैला हुआ था। पूर्वी भारत के अंग बंग पुंडरु किरात और प्राग ज्योतिष के राजा उसके अधीनता में थे। दक्षिण में कथ कैसिक भरार व खानदेश के प्रदेश भी उसके साम्राज्य में सम्मिलित थे। चेदी के पश्चिमोत्तर में सूरसेन प्रदेश वर्तमान मथुरा व उसके समीप वर्ती प्रदेश में अंधक यादवों का राज था। वहां का राजा कंस जरासंध का दामाद था। जरासंध की पुत्री व सहदेव की बहन अस्ति और प्राप्ति कंस की पत्नियां थी। जरासंध की सहायता व संरक्षण के भरोसे कंस अपनी प्रजा पर मनमाना अत्याचार करता था। इसमें संदेह नहीं कि भारत के बहुत बड़े भाग में उस समय जरासंध की तूती बोलती थी। अनेक राज ऐसे भी थे जिन्होंने मगध राज जरासंध की अधीनता स्वीकार कर लेने के स्थान पर अपने प्रदेशों को छोड़कर कहीं सुदूर पश्चिम में बस जाना उचित समझा। ऐसे 18 राज तो भोजों के ही थे। इनके अतिरिक्त सूरसेन भडकार बोध साल्व पटचर स्वस्थल सुकुट कुलिंद कुंती और सालवायन ये सब राजकुल अपने जनपदों को छोड़कर जरासंध के भय से पश्चिम की ओर चले गए थे। इसी प्रकार दक्षिण पंचाल पूर्व कौशल और मत्स्य राज्यों के निवासी भी अपने अपने प्रदेशों को छोड़कर दक्षिण में जाकर बस गए। पंचाल लोग अपने स्वराज्य को छोड़कर सब तरफ बिखर गए। ऊपर जिन राजकुलों व गणों का उल्लेख किया गया है उन सब के प्रदेशों का ठीक ठीक परिचय हमें नहीं है, पर मगध राज जरासंध के उग्र साम्राज्यवाद के संबंध में इस संदर्भ से बहुत महत्वपूर्ण बातें हमें ज्ञात होती है। बंग पुंडरु पुंडर चेदी आदि जिन राज्यों ने जरासंध की अधीनता को स्वीकार कर लिया था उन्हें मगध साम्राज्य में अधीनस्थ रूप से कायम रहने दिया गया था, पर जिन राजकुलों व गणराज्यों ने यह अधीन स्थिति स्वीकार नहीं की थी उन्हें अपने अपने जनपदों व प्रदेशों को छोड़कर सुदूरवर्ती प्रदेशों में जा बसने के लिए विवश होना पड़ा था। मगध की इस उग्र साम्राज्य लिप्सा से आर्यावर्त के जनपदों में उस समय कितनी भयंकर उथल पुथल मची होगी इसकी कल्पना सुगमता से की जा सकती है। जरासंध ने बहुत से राजाओं को कैद कर कारागार में भी डलवा दिया था। महाभारत की अनुश्रुति के अनुसार जिस प्रकार सिंह महाहस्तियों को पकड़कर गिरिराज के किकंदरा में बंद कर देता है उसी प्रकार जरासंध ने राजाओं को परास्त कर गिरिब्रज में कैद कर लिया। राजाओं के द्वारा यज्ञ करने की इच्छा से राजाओं का यज्ञ में बलिदान करने की इच्छा से उस जरासंध ने अत्यंत कठोर तप करके उमापति महादेव को संतुष्ट किया है और राजाओं को एक एक करके परास्त कर अपने पास कैद कर लिया है। पांडव युधिष्ठिर राजा युधिष्ठिर उन दिनों राज्यसु यज्ञ करने के लिए उत्सुक थे। कृष्ण ने उन्हें बताया कि जब तक जरासंध जैसा शक्तिशाली सम्राट विद्यमान है राज्यसु के लिए कोशिश करना बिल्कुल व्यर्थ है। पहले जरासंध को मारने का प्रयत्न करना चाहिए, उसे मार्ग से हटाए बिना राज्यसु यज्ञ का स्वप्न देखना भी बेकार है। कृष्ण को जरासंध से विशेष विरोध व द्वेष था। वे अंधक वृष्णि संघ के संघ मुख्य व नेता थे। जरासंध के आक्रमणों से विवश होकर इस अंधक वृष्णि संघ को अपने प्रदेश सूरसेन को छोड़कर सुदूर पश्चिम में द्वारिका में जा बसने के लिए विवश होना पड़ा था। कृष्ण सूरसेन प्रदेश में यादव लोगों के दो राज थे, अंधक और वृष्णि। अंधक यादवों का नेता कंस था जो जरासंध का दामाद था। जरासंध मगध का एक राट था, पर कंस अंधक यादवों में समानों में ज्येष्ठ था, एक राट नहीं। पर अपने ससुर जरासंध का सहारा पाकर कंस ने भी अंधक यादव कुलों के अन्य वृद्धों व नेताओं को दबाना शुरू किया और एकाराट बन गया। पर अंधक यादवों को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने अपने पड़ोसी दूसरे यादव राजा राज वृष्णिगण से सहायता मांगी। वृष्णि यादवों का नेता कृष्ण था। कृष्ण ने कंस को मार डाला। यह सुनते ही जरासंध का कोप कृष्ण और यादवों पर उमड़ पड़ा। उसने 17 बार यादवों पर आक्रमण किया। अंधक वृष्णियों ने खूब डटकर मगधराज जरासंध का मुकाबला किया। हंस और बिम्भक नामक 2 सेनापति इन युद्धों में काम आए। आखिर 18वीं बार जरासंध ने एक शक्तिशाली सेना लेकर यादवों पर आक्रमण किया। इस बार अंधक वृष्णि परास्त हुए और कृष्ण की सलाह से वे सूरसेन देश को छोड़कर द्वारिका में जा बसे। वहां अंधक और वृष्णि गणों ने परस्पर मिलकर एक संघराज बना लिया और कृष्ण उसके संघमुख नियुक्त हुए। द्वारिका मगध से बहुत दूर थी। वहां जरासंध के आक्रमणों का कोई भय नहीं था। पर कृष्ण अपने परम शत्रु मगध सम्राट से बदला उतारने के लिए उत्सुक थे। अकेला यादव संघ मगध का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इसीलिए उन्होंने इंद्रप्रस्थ के पांडव राजा युधिष्ठिर को अपना मित्र बनाया। पांडव राजा बड़े महत्वाकांक्षी थे। वे राजसूय यज्ञ करके चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के प्रयत्न में थे। कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जरासंध को मारे बिना वे अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। उसने कहा, इस समय एक महान सम्राट मगधराज जरासंध पहले से विद्यमान है। वह अपने बल पराक्रम से सम्राट पद पर पहुंचा है। एल तथा एच्छवाकव वंशों की इस समय 100 शाखाएं हैं। शक्ति से चाहे जरासंध ने इन्हें अपने अधीन कर लिया हो, परंतु दिल से उसे वे नहीं चाहते। वह बल से ही उन पर शासन करता है। 86 राजा तो उसने कैद ही कर रखे हैं और साथ ही यह घोषणा की हुई है कि जब इन कैदी राजाओं की संख्या पूरी 100 हो जाएगी तो महादेव जी के आगे इनकी बलि चढ़ा दी जाएगी। यह बिल्कुल अनहोनी बात है कि किसी राज्य के विधि पूर्वक अभिषिक्त राजा को कोई सम्राट कैद रखे। क्षत्रिय का धर्म लड़ाई में मरना है, पशु के समान यज्ञ में बलि चढ़ना नहीं। मगधराज का हमें मिलकर मुकाबला करना चाहिए। जो अब जरासंध के मुकाबले में खड़ा होगा वही उज्ज्वल कृति प्राप्त कर सकेगा। जरासंध को जो परास्त करेगा वही इस समय सम्राट पद का अधिकारी होगा। जरासंध की पराजय। कृष्ण की प्रेरणा से पांडव लोग जरासंध का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। पर उन्होंने सम्मुख युद्ध में जरासंध का सामना करना उचित नहीं समझा। अर्जुन और भीम भेष बदलकर कृष्ण के साथ मगध की राजधानी गिरिव्रज में गए और वहां जरासंध को द्वंद युद्ध के लिए ललकारा। कृष्ण ने युद्ध के लिए आवाहन करते हुए जरासंध से कहा, हम तुझे द्वंद युद्ध के लिए आवाहन करते हैं। या तो कारागार में डाले हुए सब राजाओं को छोड़ दो या मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। जरासंध जैसा उद्भट वीर द्वंद युद्ध से इनकार नहीं कर सकता था। सर्वसाधारण जनता के सामने खुले मैदान में जरासंध और भीम की लड़ाई हुई। दर्शकों में शूद्र, स्त्रियां, वृद्ध सब शामिल थे। द्वंद युद्ध में भीम की विजय हुई और जरासंध मारा गया। यदि पांडव सेनाएं मगध पर आक्रमण करती तो जरासंध की सैन्य शक्ति को नष्ट कर सकना शायद उनके लिए संभव न होता। कृष्ण ने अपनी नीति कुशलता से पांडवों को यही सलाह दी कि वे भेष बदलकर गिरिव्रज पहुँचे और वहां जरासंध को द्वंद युद्ध में परास्त करें। कृष्ण भली भांति जानता था कि जरासंध के मरते ही मगध में क्रांति हो जाएगी, क्योंकि मगध का साम्राज्य एकराट की वैयक्तिक शक्ति पर ही निर्भर था। जरासंध के मारे जाते ही कृष्ण ने पहला कार्य यह किया कि कैद में पड़े हुए राजाओं को मुक्त कर दिया। इन सब राजाओं ने प्रसन्नतापूर्वक पांडवों की अधीनता स्वीकार की। ये सब राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए सहर्ष तैयार हो गए। मगध का साम्राज्यवाद इन सब राजाओं का सम्मूल उच्छेद करने में तत्पर था, पर युधिष्ठिर का साम्राज्यवाद इन सब राजाओं का समूल उच्छेद करने में तत्पर था पर युधिष्ठिर का साम्राज्यवाद प्राचीन आर्य परंपरा के अनुकूल था। अन्य राजाओं से अधीनता स्वीकृत कराना ही उसका उद्देश्य था। मूर्धाभिषिक्त राजाओं को कैद करना या मारना प्राचीन आर्य परंपरा के सर्वथा विपरीत था। जरासंध की मृत्यु के बाद उसका लड़का सहदेव मगध के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। एकराट राजाओं की शक्ति बहुत कुछ पहले उनके व्यक्तित्व पर निर्भर रहती है। जरासंध के मरते ही उसका शक्तिशाली साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर का सहाय पाकर विविध अधीन राजा फिर से स्वतंत्र हो गए। अनेक गणराज भी निर्भय होकर फिर से अपने जनपदों को वापस लौट आए। अब भारत की प्रधान राजनीतिक शक्ति मगध की जगह पर इंद्रप्रस्थ हो गई। राजा युधिष्ठिर ने राजसू यज्ञ करने से पूर्व दिग्विजय किया और भारत के विविध जनपदों से अधीनता स्वीकृत कराई। पूर्वी भारत को विजय करने का कार्य भीम के सुपुर्द किया गया था। मगध को अधीन करने के लिए भीम को युद्ध की आवश्यकता नहीं हुई। सहदेव को समझा बुझाकर अशांत कर दिया गया और उसने पांडवों को कर देना स्वीकार कर लिया। जिस कृष्ण के षड्यंत्र से जरासंध का वध हुआ था, युधिष्ठिर की राजसूय सभा में उसी की सहदेव ने अर्चना की और विविध उपहार पांडव राजा की सेवा में भेंट किए। पर पांडवों का यह उत्कर्ष देर तक कायम नहीं रहा। हस्तिनापुर के कौरव पांडवों के इस उत्कर्ष को सहन नहीं कर सकते थे। कौरवों और पांडवों में आगे चलकर जो संघर्ष हुआ उसी को महाभारत का युद्ध कहा जाता है। महाभारत का युद्ध। जरासंध की पराजय और मृत्यु के बाद मगध की राजनीतिक शक्ति निर्बल पड़ गई। इस समय भारत के आर्य राज्यों में सबसे अधिक शक्तिशाली पांडवों का राज्य था, जिनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांडवों के इस उत्कर्ष से दुर्योधन को बहुत चिढ़ थी। युद्ध द्वारा पांडवों को परास्त कर सकना सुगम नहीं था, अतः दुर्योधन ने एक अन्य उपाय का आश्रय लिया। प्राचीन युग में आर्यों को धूत का बड़ा व्यसन था। जिस प्रकार युद्ध में पीठ दिखाना घृणित माना जाता था, वैसे ही द्यूत के लिए आवाहन होने पर उसे स्वीकार न करना भी बहुत बुरा समझा जाता था। दुर्योधन का मामा गंधार देश का राजा शकुनी था। वह द्यूत में अत्यंत प्रवीण था। उसके भरोसे पर दुर्योधन ने पांडवों को द्यूत खेलने का निमंत्रण दिया। पांडव लोग द्यूत में अपना सारा राज हार गए। द्यूत की शर्त के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 13वें वर्ष का अज्ञातवास करना पड़ा। इस बीच में हस्तिनापुर के कौरवों ने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली। द्यूत में हार जाने के बाद कारण 13 वर्ष के लिए इंद्रप्रस्थ के राज्य पर भी कौरवों का अधिकार हो गया पांडव हो गया था। वनवास और अज्ञातवास की अवधि समाप्त हो जाने पर पांडवों ने दुर्योधन से अपना राज वापस मांगा। द्यूत की शर्तों के अनुसार अब इंद्रप्रस्थ का राज पांडवों का वापस मिल जाना चाहिए था, पर दुर्योधन ने उत्तर दिया कि युद्ध के बिना मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। उसे भरोसा था कि असहाय पांडव कौरवों से अपना राज नहीं ले सकेंगे, पर पांडवों के साथ सहानुभूति रखने वाले राजाओं की कमी नहीं थी। कृष्णवंशी के नेता पांडवों के परम सखा थे। अन्य भी अनेक राजाओं ने उनका साथ दिया। कौरवों और पांडवों में जो लड़ाई उस समय हुई उसे ही महाभारत युद्ध कहते हैं। आर्यावर्त के प्रायः सभी राज इस युद्ध में सम्मिलित हुए। मगध का राजा सहदेव इस युद्ध में पांडवों के पक्ष में था, किंतु प्राच्य भारत के अनेक राज विदेह अंग बंग कलिंग आदि कर्ण की अध्यक्षता में कौरवों के पक्ष में थे। भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित असम देश का राजा भगदत्त भी इस युद्ध में कौरवों की ओर था। इस प्रकार प्रायः सारा प्राच्य भारत कौरवों का पक्षपाती था। प्राच्य राज्यों के समान उत्तर पश्चिमी भारत और पंजाब के राज्य भी महाभारत युद्ध में कौरवों के पक्ष में सम्मिलित हुए। केकय सिब्बी सिंधु सौबीर गांधार त्रिगर्त मंद्र क्षुद्रक मालव, अम्बस्ट और कंबोज आदि पश्चिम भारत के सब राज कौरवों की तरफ हुए। सिंधु सौबीर का राजा जयद्रथ था, जो दुर्योधन का बहनोई था। वह उस क्षेत्र में एक अत्यंत प्रभावशाली राजा था और उत्तर पश्चिमी भारत के अन्य राजा उसके प्रभाव में थे। वह कौरवों की ओर से लड़ाई में शामिल हुआ। मद्र देश का राजा शल्य पांडवों का मामा था, पर उसने भी कौरवों का पक्ष लिया। कोसल, वत्स, विदर्भ आदि के राजाओं ने भी इस युद्ध में कौरवों का साथ दिया। पांडवों के पक्ष में वे अनेक राजा थे जिन्हें जरासंध के प्रभाव के कारण स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। काशी, पूर्वी कौशल, पंचाल, मत्स्य, चेदी, कारूस और मगध के राजाओं का पांडवों के पक्षपातियों में प्रमुख स्थान था। वृष्णि राज्य के अधिपति कृष्ण पांडवों के प्रधान सहायक थे, पर संभवतः वे वृष्णि लोगों को पांडवों के पक्ष में युद्ध के लिए तैयार नहीं कर सके। परिणाम यह हुआ कि अकेले कृष्ण सारथी व परामर्शदाता के रूप में पांडवों के पक्ष में सम्मिलित हुए। यादवों के जो अनेक छोटे बड़े राज इस समय विद्यमान थे, वे कौरव और पांडव दोनों पक्षों में बटे हुए थे। महाभारत में उन राज्यों व राजाओं का अविकल रूप से उल्लेख किया गया है जो इस महायुद्ध में दोनों पक्षों की ओर से लड़े थे। इनकी सूची को पढ़कर यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय का भारत बहुत से छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था और इन राज्यों की संख्या सैकड़ों में थी। इसमें संदेह नहीं कि इस युग में अनेक राजाओं का यह प्रयत्न रहता था कि वे अपने साम्राज्य का विस्तार करें और अन्य राज्यों को जीतकर अपने अधीन कर लें। पर आर्य जाति की परंपरा के अनुसार ये महत्वाकांक्षी चक्रवर्ती सम्राट विजित राज्यों और उनके राजाओं का मूलोच्छेद नहीं करते थे और अधीनस्थ रूप में उनकी पृथक सत्ता कायम रहती थी। यही कारण है कि महाभारत युद्ध में सम्मिलित राजाओं की संख्या सैकड़ों में पहुंच गई थी। कौरवों और पांडवों के पक्षों में शामिल हुए राज्यों की सूची को ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि उत्तर पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी विंध्य के राज कौरवों के पक्ष में थे और मध्य भारत, आर्यावर्त और गुजरात के राज पांडवों के। इसका कोई मूलभूत राजनीतिक कारण था या नहीं, यह कह सकना बहुत कठिन है। पांडव पक्ष की सेनाएं मत्स्य देश, अलवर व उसका समीपवर्ती प्रदेश में और कौरवों की सेनाएं हस्तिनापुर से यमुना तक के प्रदेश में एकत्र हुई। अंत में कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों पक्षों की सेनाओं में घनघोर युद्ध हुआ। प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार 18 दिन की लड़ाई के बाद युद्ध का निपटारा हो गया। पांडवों का पक्ष विजयी हुआ। दुर्योधन और उसके भाई युद्ध में मारे गए और पांडव बंधु कुरु देश के शासन को हस्तगत करने में समर्थ हुए। अब इंद्रप्रस्थ के पांडव राजा न केवल कुरु देश के अधिपति थे, अपितु भारत में उनकी शक्ति का मुकाबला करने वाला अन्य कोई नहीं था। महाभारत के इस युद्ध में योद्धाओं का बहुत बड़ी संख्या में संहार हुआ। इस युद्ध में शामिल होने के लिए जो सेनाएं एकत्र हुई थी, महाभारत ग्रंथ में उनकी संख्या अतिशयोक्ति के साथ दी गई है। इसके अनुसार युद्ध में शामिल हुए पदाति योद्धाओं की ही संख्या 20 लाख के लगभग थी। पदातियों के अतिरिक्त हाथी, घोड़े और रथ भी लाखों की संख्या में लड़ाई के लिए लाए गए थे। महाभारत की इस संख्या पर विश्वास कर सकना तो संभव नहीं है, पर यह विश्वास पूर्वक कहा जा सकता है कि महाभारत की यह लड़ाई भारतीय इतिहास में अद्वितीय थी। इतनी बड़ी संख्या में विविध आर्य राजा इससे पहले कभी किसी युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि कितने ही वीर पुरुष इस युद्ध में काम आए। महाभारत में इस बात का बड़े मार्मिक शब्दों में वर्णन किया गया है कि जब विजयी पांडव कुरु देश की राजधानी हस्तिनापुर में पहुँचे तो उन्हें अनाथों और विधवाओं के रुदन के अतिरिक्त वहाँ कुछ नहीं मिला। अपने देश की इस दुर्दशा को देखकर उनके हृदय में अत्यंत ग्लानि उत्पन्न हुई और उनका मन राज्य के शासन में नहीं लगा। अनुश्रुति के अनुसार पांडव लोग कुछ समय बाद ही हस्तिनापुर को छोड़कर हिमालय की ओर चले गए और वहां तपस्या द्वारा उन्होंने अपने जीवन का अंत किया। पांडव बंधुओं के बाद अर्जुन का पोता परीक्षित कुरुदेश का राजा बना। यह पर कुरुदेश का अब वह उत्कर्ष नहीं रहा जो पहले था। कौरवों और पांडवों के युद्ध के कारण कुरुदेश की शक्ति छिन्न हो गई थी और मगध को फिर से अपनी शक्ति को बढ़ाने का अवसर मिल गया था। आगे चलकर जरासंध के बृहद्रथ वंश ने और अधिक उन्नति की और मगध के राजा ही भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने में समर्थ हुए। कृष्ण और यादव। इस प्रकरण में हमने अनेक बार कृष्ण का जिक्र किया है जो महाभारत युद्ध में पांडवों के परम सहायक थे। कृष्ण वृष्णि राज के राजा या गणमुख थे। संभवतः इस युग में वृष्णियों में वंश परंपरागत राजसत्ता का अंत होकर गणतंत्र शासन की स्थापना हो चुकी थी और कृष्ण वंश क्रमानुगत राजा न होकर वृष्णिगण के मुख्य मात्र थे। कृष्ण केवल राजनीतिज्ञ और गणमुख ही नहीं थे, उभे उत्कृष्ट विचारक, दार्शनिक और तत्ववेता भी थे। श्रीमद्भगवद गीता में उपदिष्ट कर्मयोग का प्रवचन उन्होंने ही किया था। अनेक ऐतिहासिकों के अनुसार कृष्ण ही उस भागवत धर्म के प्रवर्तक थे जो आगे चलकर भारत का एक प्रमुख धर्म बन गया। महाभारत युद्ध के कुछ समय बाद यादव वंश के विविध राज्यों में आपस में लड़ाई शुरू हो गई। इन लड़ाइयों का रूप गृह कलह का था। विशेषतया वृष्णि लोग परस्पर लड़कर बहुत दुर्दशा को प्राप्त हो गए। महाभारत युद्ध में कृष्ण ने जिस प्रकार अकेले पांडवों का साथ दिया था, यह बात ही वृष्णियों के पारस्परिक मतभेदों को सूचित करने के लिए पर्याप्त है। कृष्ण का अंत एक निराश राजनीतिज्ञ के रूप में हुआ जो अपने गणराज्य की आंतरिक समस्याओं को सुलझाने में प्रायः असफल रहे। महाभारत के युद्ध में आर्यावर्त के क्षत्रियों का जिस बड़ी संख्या में संहार हुआ था, उसके कारण इस देश के विविध राज्यों की दशा अत्यंत हीन और शोचनीय हो गई थी। पौराणिक अनुश्रुति में वैवस्वत मनु से शुरू कर महाभारत युद्ध तक का इतिवृत्त जिस ढंग से दिया गया है, उसे हमने ऊपर के 8 प्रकरणों में अत्यंत संक्षेप के साथ लिखा है। इसमें संदेह नहीं कि पुराणों का यह इतिवृत्त अस्पष्ट और अपूर्ण है। इक्ष्वाकव, पौरव आदि वंशों के राजाओं की जो सूची दी गई है वह पूर्ण भी नहीं है। अनेक राजाओं के नाम उसमें छूट गए हैं, पर उस द्वारा वैदिक युग के आर्य राज्यों और उनके महत्वपूर्ण राजाओं का एक ऐसा विवरण हमारे सम्मुख प्रस्तुत हो जाता है जिसके महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। वैदिक साहित्य द्वारा पौराणिक अनुश्रुति की पुष्टि। पुराणों में प्राचीन भारत के जिन राज्यों और राजाओं के नाम विद्यमान हैं, उनमें कतिपय का उल्लेख वैदिक साहित्य में भी हुआ है। मानव वंश के संस्थापक वैश्वत मनु ऋग्वेद के कतिपय मंत्रों के ऋषि हैं और इसी प्रकार उनके पुत्र नाभानेदिष्ट और सर्यात भी है। नाभानेदिष्ट के वंशजों में भलंदन और बातसधि के नाम भी वैदिक मंत्रों के ऋषियों के रूप में उल्लेखित है। इक्ष्वाकव वंश के प्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट मांधाता, अम्बरीश और त्रसदस्यु एल वंश के पुरुरवा, नहुष और अयाति तथा पौरव वंश के राजा सुदास द्वारा विरचित या दर्शन किए हुए मंत्र वेदों के अंतर्गत हैं। पौराणिक अनुश्रुति में वर्णित कितनी ही बातों के संकेत वेदों में भी पाए जाते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध उत्तर पंचाल के राजा सुदास और हस्तिनापुर के राजा संबरन के युद्ध हैं, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में दासराग युद्ध के रूप में किया गया है। इस युद्ध में सुदास की शक्ति का विरोध करने के लिए 10 राजाओं ने एक संघ संगठित किया था, जिनमें से पकथ, भलानस, सिब्बी, विशानीन और अलीन सिंध नदी के पश्चिमी क्षेत्र के थे और अनु, द्रुह, तुर्वस, यदु और पुरु पूर्वी क्षेत्र के। दासराग युद्ध का वृतांत पहले लिखा जा चुका है, यहाँ इतना निर्देश करना ही पर्याप्त है कि राजा सुदास के संबंध में जो अनुश्रुति पुराणों में पाई जाती है, ऋग्वेद द्वारा भी उसका समर्थन होता है। पुराणों के अनुसार राजा नहुष एल वंश के पुरुरवा के पौत्र थे और नहुष के पुत्र का नाम अयाति था। पुराणों में अयाति को चक्रवर्ती कहा गया है। अयाति के 5 पुत्र थे, यदु, तुर्वसु, द्रुहु, अनु और पुरु। इनमें से पुरु ने अपने पिता के राज्य को प्राप्त किया और अन्य चारों ने नए राज्यों की स्थापना की। एल वंश के इन राजाओं के नाम केवल वैदिक ऋषियों के रूप में ही नहीं अपितु उनके संबंध में कतिपय घटनाओं के संकेत भी ऋग्वेद में विद्यमान हैं। एक मंत्र में नहुष के दान की स्तुति की गई है और अयाति को यज्ञों का अनुष्ठाता बताया गया है, पर वेदों में कहीं कोई ऐसा संकेत नहीं मिलता जिससे गधु, तुर्वसु आदि का अयाति के पुत्र होना सूचित होता हो। यद्यपि इन 5 का उल्लेख ऋग्वेद में विद्यमान सहायता के लिए अग्रसर हुए थे। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार अयाति के 5 पुत्रों ने के अपने अपने पृथक राज्य थे। ऋग्वेद में यदु, तुर्वसु, द्रुहु, अनु और पुरु नाम के जिन 5 राज्यों का उल्लेख है, उनकी स्थापना अयाति के इन्हीं नामों के पुत्रों द्वारा की गई थी, यह कल्पना असंगत नहीं है। राजा सुदास के अतिरिक्त उत्तर पंचाल के राजा सृंजय, सहदेव और सोमक का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। सृंजय के लिए इंद्र ने तुर्वस के राजा ब्रीचीवंत को परास्त किया था। सृंजय के बाद उत्तर पंचाल के राज सिंहासन पर सहदेव और सोमक आरूढ़ हुए थे। सहदेव सोमक द्वारा दिए गए दान की स्तुति में ऋषि कच्छिवान ने 4 मंत्र कहे हैं। पौराणिक अनुश्रुवि में जिन अनेक प्रतापी एवं चक्रवर्ती राजाओं का वर्णन है, उनमें से कतिपय द्वारा अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किए जाने का उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों में भी विद्यमान है। ऐसा एक राजा दोहसंति दुष्यंत का पुत्र भरत था, जिसने कि गंगा नदी के तट पर अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया था। वैदिक साहित्य में कितने ही ऐसे राजाओं के नाम भी आए हैं जिनका उल्लेख पौराणिक अनुश्रुति में या तो बिल्कुल नहीं है या ऐसे ढंग से है जिससे कि इन राजाओं का कोई महत्व सूचित नहीं होता। ऐसे राजा अध्यावर्ती अष्टकर्ण आदि थे, जिनके दान की स्तुति में अनेक मंत्र ऋग्वेद में विद्यमान हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक ऐसे प्रतापी राजाओं का उल्लेख है जिन्होंने कि अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान कर चक्रवर्ती पद प्राप्त किया था। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार ये राजा कावसे, तूर, सहदेव, सोमक, संरजय, सहदेव, देवावृद्ध, बभ्रु, वैधर्व, भीम, गांधार, नग्नजीत, जानकी, ऋतुवीत और पैजवन सुदास थे। इनके नाम देने के पश्चात ऐत्रेय ब्राह्मण में यह कहा गया है कि ये राजा सब दिशाओं से बलि अर्थात कर ग्रहण किया करते थे, इससे इनका चक्रवर्ती राजा होना प्रमाणित होता है। इनमें से सानरजय सृंजय के पुत्र सहदेव, सहदेव के पुत्र सोमक और पैजवन सुदास का उल्लेख पौराणिक अनुश्रुति में भी है और ऋग्वेद में भी। तूर काबसे हस्तिनापुर के राजा संबरन का समकालीन था और दासराग युद्ध के साथ भी उसका संबंध था। जानकी ऋतुवित दैवावृद्ध बभ्रू और गांधार नग्नजीत का पौराणिक अनुश्रुति में चक्रवर्ती सम्राटों के रूप में उल्लेख नहीं मिलता, पर इनकी सत्ता से इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके परिगणन ऐसे राजाओं के साथ किया गया है जिनकी स्मृति पौराणिक अनुश्रुति में विद्यमान है। ऐत्रेय ब्राह्मण में ही अन्यत्र ऐसे राजाओं की सूची दी गई है जिनका विधिवत महाभिषेक हुआ था। ये राजा जन्मेजय परीक्षित, सार्यात मानव, च्यवन भार्गव, सत्रजीत, सोम सुसम भार्गव, युधान सृष्टि अग्रसेन, सुदास पैजवन, मरुत अविचित, संब्रत अंगवैरोचन, भरत दोहसंती, दुर्मुख पांचाल, आत्मराती, ज्ञान तपी आदि थे। इनमें से अनेक ऐसे हैं पौराणिक अनुश्रुति में जिनका कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता, पर क्योंकि इनके नाम दुष्यंत के पुत्र भरत, परीक्षित के पुत्र, इतिहास में जन्मेजय और पंजवन सुदास सदृश इतिहास प्रसिद्ध राजाओं के साथ दिए गए हैं, अतः इन राजाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान मानना सर्वथा उचित है। ऋग्वेद में कितने ही ऐसे राजाओं का उल्लेख है जिन्होंने की इंद्र की सहायता से अपने अनेक शत्रुओं को परास्त किया था। वैदिक मंत्रों में इंद्र की स्तुति करते हुए कहा गया है कि उसके सहाय से ही ये राजा अपने शत्रुओं को पराजित कर सकने में समर्थ हुए थे। साथ ही कतिपय ऐसे मंत्र भी हैं जिनमें राजाओं के दान की प्रशंसा की गई है। इस प्रकार जिन राजाओं का उल्लेख वैदिक साहित्य में और विशेषतया ऋग्वेद में मिलता है उनमें मित्रातिथि, युधामयी, वित्तहव्य, बैसंत, प्रमगंध, तुर्वयान, चित्र, चित्ररथ, कुरंग, कौरायन, पाक अस्थामन, स्वनैभाव्य, क्रिजासब, असंग प्लायोगी, आयु, अभ्यावर्ती, चायमान, अभिप्रातारिन, काछेसेनी आदि उल्लेखनीय है। ये सब राजा ऐसे हैं जिनका संबंध में पौराणिक अनुश्रुति से कोई विशेष परिचय नहीं मिलता या जिनका पुराणों में उल्लेख ही नहीं है। ऋग्वेद में भी प्रायः इनके नाम ही दिए गए हैं, यद्यपि किसी किसी राजा के संबंध में कतिपय ऐसे संकेत भी विद्यमान हैं जिनसे उनके राज्य का तथा उनके द्वारा किए गए किसी महत्वपूर्ण कार्य यथा विजय एवं राज विस्तार आदि का कुछ आभास मिल जाता है। उदाहरणार्थ तुर्वयान को पक्तों के राजा के रूप में उल्लेखित कर एक मंत्र में यह कहा गया है कि इंद्र ने चैवान के विरुद्ध उसकी सहायता की थी। पकथ एक आर्य जाति थी जिसका राज सिंध नदी के पश्चिम में था। वर्तमान समय के पकथून इन पक्वों के ही उत्तराधिकारी हैं। पौराणिक अनुश्रुति में न इन पक्तों का उल्लेख है और न इनके किसी राजा का, पर ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में पक्तों का उल्लेख विद्यमान है। दासराग युग में वे सुदास के विरुद्ध संगठित संघ में सम्मिलित हुए थे। एक मंत्र में उन्हें अश्विनों का आश्रित व कृपा पात्र भी कहा गया है। निसंदेह पकथ लोग अश्विनों के उपासक थे। पकथ के समान सिबी भी आर्यों की एक प्राचीन जाति थी और उसका राज्य भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में विद्यमान था। बौद्ध युग के बाद के काल के सिबी जनपद के इतिहास की अनेक बातें हमें ज्ञात है, पर वैदिक युग में सिबी राज की क्या स्थिति थी इस संबंध में कोई सूचना पौराणिक अनुश्रुति से प्राप्त नहीं होती। पर ऐत्रेय ब्राह्मण में सभ्य राजा अभिमित्रपतन सुमिसन का उल्लेख है, जिससे यह समझा जा सकता है कि ब्राह्मण ग्रंथों के समय उत्तर वैदिक काल में सिबी जनपद की स्वतंत्र रूप से सत्ता थी और उसके एक राजा का नाम अमित्रतपन सुस्मिन था। यह नाम पुराणों में कहीं नहीं पाया जाता। इस सुस्मिन सभ्य ने उस आत्मराती ज्ञान तपी को प्रास्त किया था, जो उत्तर कुरु की विजय के लिए प्रयत्नशील था। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु की स्थिति परेन हिमवत हिमवंत हिमालय के परे बताई गई है। उत्तर कुरु सीबी पखथ आदि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के राज्य थे। पौराणिक अनुश्रुति से जिनका विशेष परिचय नहीं मिलता, पर वैदिक साहित्य द्वारा उनके संबंध में भी कतिपय महत्वपूर्ण संकेत अवश्य प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद में वल्लिक का एक प्रदेश या राज्य के रूप में उल्लेख और शतपथ ब्राह्मण में वल्लिक प्रातिपीय नाम के एक राजा का वर्णन है, जिसका संबंध संभवतः वल्लिक या वाल्लिक देश के साथ था। इसकी स्थिति भी उत्तर कुरु के समान हिमालय के पर्वती क्षेत्र में ही थी। सिंध नदी के परे की अलीन विशान आदि जिन जातियों के राजाओं ने दासराग युद्ध में सुदास के विरुद्ध भाग लिया था, उनके संबंध में भी पौराणिक अनुश्रुति प्रायः चुप है। इन सब बातों को दृष्टि में रखकर यह परिणाम निकाला जा सकता है कि वैदिक युग के राजनीतिक इतिहास के लिए आवश्यक सामग्री न पुराणों और रामायण महाभारत में पूर्ण रूप से प्राप्त होती है और न वैदिक साहित्य में। राजनीतिक इतिहास के साथ संबंध रखने वाले अनेक ऐसे संकेत वेदों में विद्यमान हैं जो पुराण आदि में नहीं पाए जाते। इसी प्रकार पौराणिक अनुश्रुति में प्राचीन आर्य राज्यों और उनके राजाओं का जो इतिवृत्त संकलित है, उसमें बहुत सा ऐसा है जिसके संबंध में वैदिक साहित्य में कोई भी निर्देश नहीं मिलता। ऐसे तथ्य अधिक नहीं हैं जो पुराणों तथा वैदिक साहित्य के में समान रूप से पाए जाते हों, पर यह सर्वथा स्वाभाविक है, क्योंकि वेद धर्म पर ग्रंथ है और उनमें राज्यों भौगोलिक स्थानों और राजाओं आदि के नाम प्रसंगवश ही आ गए हैं। फिर भी क्योंकि वेदों द्वारा पौराणिक अनुश्रुति की किन्हीं किन्हीं बातों की पुष्टि हो जाती है, अतः पुराणों में संकलित ऐतिहासिक इतिवृत्त की प्रामाणिकता और अधिक बढ़ जाती है। दसवां, वैदिक युग के राजाओं का तिथि क्रम। जैसा कि हम पहले प्रतिपादित कर चुके हैं, वैवस्वत मनु और महाभारत के युद्ध के बीच के काल को भारतीय इतिहास का वैदिक युग कहा जाता है। मनु और महाभारत कालीन कौरव पांडवों के बीच के राजाओं की 95 या 96 पीढ़ियां पुराणों में वर्णित है। एक राजा के शासन काल की औसतन 18 वर्ष का मानकर डॉक्टर पुसलकर ने विद्या भवन द्वारा प्रकाशित वैदिक एज ग्रंथ में यह निरूपित किया है कि वैवस्वत मनु का समय महाभारत के 95 × 18 = 1710 वर्ष पहले था। डॉक्टर पुलसर ने महाभारत का समय 1400 ईसा पूर्व माना है, अतः मनु का समय (1400 + 1710 = 3110 ईस्वी पूर्व हुआ, जिसे उन्होंने 3102 ईस्वी पूर्व के रूप में इस कारण परिवर्तित कर दिया क्योंकि प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार यह एक महत्वपूर्ण तिथि है और कलयुग का प्रारंभ इसी से माना जाता है। यदि मनु का समय 3102 ईस्वी पूर्व में हो तो अयाति मनु से 5 पीढ़ी बाद का काल 3010 ईस्वी पूर्व के लगभग मानधाता मनु से 20 पीढ़ी बाद का काल 2740 ईस्वी पूर्व के लगभग हरिश्चंद मनु से 31 पीढ़ी के बाद का काल 2542 ईस्वी पूर्व के लगभग और रामचंद्र मनु से 65वीं पीढ़ी बाद का काल 1950 ईस्वी पूर्व में रखना होगा। पर भारतीय परंपरा के अनुसरण कर जो विद्वान महाभारत युद्ध का समय 3102 ईस्वी पूर्व मानते हैं, उनके अनुसार मनु का काल 1700 वर्ष और पहले हो जाएगा और साथ ही आयाति मानधाता हरिश्चंद्र और राम आदि अन्य राजाओं का भी। पर जैसा कि हम पहले भी लिख चुके हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास का तिथि क्रम एक अत्यंत विवादग्रस्त विषय है। पौराणिक अनुश्रुति में इक्ष्वाकव आदि राजवंशों की जो वंशावलियाँ दी गई हैं वे अपूर्ण हैं और उनमें केवल महत्वपूर्ण राजाओं के नाम ही दिए गए हैं। इसीलिए डॉक्टर पुलसकर द्वारा निर्धारित कालक्रम को प्रमाणिक रूप से स्वीकार कर सकना संभव नहीं है, पर उससे वैदिक युग के राजाओं के पौर्वापर्य का जो स्पष्ट चित्र प्रस्तुत हो जाता है उसकी उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता।